Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये जितने भी चीज हैं वो धर्म चक्षु से दिखाई पड़ता है, स्वर्ग नरक पुण्य पाप ये सब चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये कौन से चक्षु से दिखेंगे? धर्म चक्षु से। जिसके पास धर्म चक्षु होगा वह पाप को भी देखेगा और वह पुण्य को भी देखेगा, इसीलिए पाप को छोड़ेगा और पुण्य को ग्रहण करेगा। यदि न देखता होता तो छोड़ता, न देखता होता तो ग्रहण करता। और जिसके पास, इसलिए मैं हमेशा मजाक में कहा करता हूं, जिसके पास धर्म चक्षु नहीं है, खाली चर्म चक्षु है धर्म चक्षु नहीं है, उनको संडे मंडे नहीं दिखता, केवल दिखता अंडे। उनको क्या दिखता है? है? उनको संडे भी नहीं दिखता, मंडे भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है उनको? चर्म चक्षु से संडे दिखेगा कि मंडे दिखेगा? अंडे दिखेगा। अंडा देखने का दृष्टि है चर्म चक्षु, और संडे मंडे तिथि वार गोत्र नक्षत्र ये देखने की दृष्टि का नाम है धर्म चक्षु। धर्म चक्षु और चर्म चक्षु ये अलग अलग चीज है। स्थूल शरीर से जुड़कर धर्म चर्म चक्षु काम करता है, ध्यान देना, स्थूल शरीर के गोलकों से मिलकर चर्म चक्षु काम करता है और सूक्ष्म शरीर से मिलकर धर्म चक्षु काम करता है। धर्म चक्षु हमेशा केवल सूक्ष्म शरीर में रहता है, हालांकि चर्म चक्षु भी चक्षुर इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में रहता है, लेकिन देखने के लिए वो उसको स्थूल शरीर की गोलकों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके कितने नेत्र हैं बोलो? हैं? आपके कितने नेत्र हैं? एक एक है तो कौन सा है? चर्म चक्षु। वो तो अपडेट है ना आप लोगों के पास? हैं? चर्म चक्षु तो बिल्कुल ठीक है ना? अरे चर्म चक्षु ठीक नहीं हो तो जाओ कुलीन कोठारी के यहां। चर्म चक्षु तो ठीक है। अच्छा धर्म चक्षु भी है कि नहीं? यदि धर्म चक्षु न होता तो तुमको प्रेमपुरी आश्रम दिखता ही नहीं, और धर्म चक्षु न होता तो तुम यहां आते ही नहीं। यहां तुम आए किस दृष्टि से? धर्म चक्षु है, क्योंकि धर्म चक्षु मतलब उसका विषय है अध्यात्म। चर्म चक्षु का विषय केवल रूप है, तो धर्म चक्षु का विषय रूप नहीं है। धर्म चक्षु का विषय अध्यात्म है, धर्म है। धर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देता है कौन? चर्म चक्षु देने वाला कौन है? किसने दिया आपको ये चर्म चक्षु? ये चर्म चक्षु देने के लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रकृति ही दे देगी। चक्षु गोलक कहीं परमात्मा देता है? चक्षु गोलक तो प्रकृति देती है, क्योंकि ये तो फिजिकल बॉडी तो प्राकृत है, पंचभूतात्मक है, और तुम्हारी जो चक्षु गोलक है वो पंचभूतात्मक है, ध्यान देना। तुम्हारे जो आंख हैं गोलक हैं, चक्षु गोलक, वह पंचभूतात्मक है। कौन से पंचभूतात्मक? पंचीकृत की अपंचीकृत? क्या बात, उठपटांग उत्तर देते हो। एक बोलता है पंचीकृत, दूसरा कहता है अपंचीकृत, गलत क्यों बोलते हो? जो है वो सही बोलो। चक्षु गोलक पंचभूतात्मक है, पंचीकृत पंचभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंचभूतात्मक है? बोलो, है साहस बोलने की? ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही पंचकृत पंचमहाभूत का कार्य है, तो स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है, तो चक्षु गोलक स्थूल शरीर का अंग होने के कारण चक्षु गोलक भी पंचीकृत पंच महाभूत का है। समझिए कि नहीं, कोई पशु मर गया तो चक्षु इंद्रिय लेके गया वो पशु, अब उसका शरीर वहां पड़ा है, शरीर पड़ा है तो चक्षु गोलक भी तो पड़ा है ना, और कोई गिद्ध या काग खाने लगेंगे तो शरीर का वो मांस भाग तो खाएंगे, साथ में आंख भाग भी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचभूत आत्मा का है, इसलिए मांसमय है चर्म चक्षु। लेकिन ये ध्यान रखना, जो धर्म चक्षु है, धर्म चक्षु या चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक और चक्षु इंद्रिय में प्रश्न कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? चक्षु इंद्रिय, चक्षु गोलक तो पंचभूतात्मक है, पंचभूतात्मक भी पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है कि नहीं? तुम लोग वेदांत नहीं सुनते हो ना, इसीलिए गड़बड़ करते हो, या सुनते भी हो तो विचार नहीं करते हो, गड़बड़ करते हो। हाँ, चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय की बात कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय पंचभूतात्मक है लेकिन वो अपंचीकृत पंचभूतात्मक है। चक्षु गोलक पंचीकृत पंचभूतात्मक है तो चक्षु इंद्रिय अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, लेकिन धर्म चक्षु कौन से भूतात्मक है? पंचीकृत पंच महाभूतात्मक है कि अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है? धर्म चक्षु धर्म चक्षु अपंचीकृत भी नहीं है, पंचीकृत भी नहीं है, धर्म चक्षु भूतात्मक है ही नहीं, भावात्मक है। मन पंच नहीं है, मन तो उस धर्म चक्षु का गोलक है। बेटा मन क्या है? धर्म चक्षु का गोलक है मन, धर्म चक्षु अलग है। यदि धर्म चक्षु का गोलक न होता, धर्म चक्षु ही होता, तो सबके पास मन है कि नहीं है? सबको पाप दिखाई पड़ता, सबको दिखाई पड़ता पाप है। इसलिए उस गोलक में जो धर्म का भाव है, मन में धर्म का भाव है तो उसको पाप दिखेगा, मन में धर्म का भाव है तो उसको पुण्य दिखेगा, मन में यदि पाप पुण्य का भाव नहीं है तो उसको केवल कुछ नहीं दिखेगा, न पाप दिखेगा न पुण्य दिखेगा, संडे हो मंडे हो सदा खाओ अंडे हो जाएगा। वो खाली चर्म चक्षु से काम करेगा, हाँ वो धर्म चक्षु से काम करेगा ही नहीं। मन तो है, मन है तो फिर धर्म चक्षु काम करना चाहिए ना, इसलिए मन गोलक है। किसका? धर्म चक्षु अलग है, धर्म चक्षु का गोलक मन है। जैसे चक्षुर इंद्रिय अलग है, चक्षुर इंद्रिय का गोलक अलग है, इसी तरह धर्म चक्षु अलग है, चक्षुर धर्म चक्षुर इंद्रिय का गोलक मन है, इसलिए वह भावमय है, वह पंचभूतात्मक नहीं है, भावात्मक है। और ये भावात्मक चक्षु धर्म चक्षु की उत्पत्ति कहां से होती है? किसी भूतों से नहीं होती है, वो प्राकृत नहीं है, धर्म चक्षु प्राकृत नहीं है, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं चर्म चक्षु प्राकृत है। प्राकृत किस लिए? चक्षु गोलक भी प्राकृत है, चक्षु इंद्रिय भी प्राकृत है। क्या समझे बोलो? चक्षु गोलक प्राकृत कैसे? पंचकृत पंच महाभूत का अंग है। चक्षु इंद्रिय प्राकृत कैसे? तो अपंचकृत पंच महाभूत का कार्य है। पंच महाभूत चाहे पंचकृत हो चाहे अपंचकृत हो, प्रकृति का कार्य है, इसलिए प्राकृत है। लेकिन धर्म चक्षु प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो अप्राकृत है। क्या समझे? वह संस्कृत है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, वो संस्कृत है। संस्कार जैसे हो गया, जिसको जैसा संस्कार मिला उसी संस्कार से उनकी दृष्टि बनती है। कौन सी? धर्म चक्षु बनता है। इसीलिए धर्म चक्षु का मूल कारण है शास्त्र। धर्म चक्षु का मूल कारण क्या है? शास्त्र और पुरोहित। धर्मशास्त्र का मूल कारण है शास्त्र और पुरोहित। हम गुरु को इतने घटिया नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का उपदेश करना गुरु का काम ही नहीं है। ध्यान दो, धर्म का उपदेश करना तो धार्मिक व्यक्ति का काम है, गुरु का काम नहीं है। और विडंबना यह है कि आज गुरु के पास जाकर धर्म की बात पूछते हैं। अरे भाई, गुरु का काम तो ज्ञान देना है, ज्ञान का उपदेश करना है, धर्म का उपदेश करना है। आज गुरुओं को धर्म का उपदेश क्यों करना पड़ रहा? कि क्योंकि तुम लोगों का जो जिम्मा था धर्म का उपदेश करने का, तुम लोग निकम्मे हो गए, तो धर्म का उपदेश का काम भी गुरु के मत्ते आ गया। इसलिए आज गुरु, जितने भी गुरु बनकर घूम रहे हैं, वह ज्ञान की बात कम करते हैं, धर्म की बात ज्यादा करते हैं, ज्ञान की बात कम करते हैं। सुन लो, जितने भी तुम गुरु बनकर घूम रहे हैं, खाली धर्म की बात कर देंगे, ज्ञान की बात कोई नहीं करेगा। धर्म का उपदेश तो माता पिता और पुरोहित इनका काम है। भाई, धर्मशास्त्र पढ़ो, धर्म का उपदेश करो, है देख लो। लेकिन तुम लोग आजकल निकम्मे हो गए। अपने बच्चों को तुमको शिक्षा देनी चाहिए थी, तुम लोगों ने धर्मशास्त्र का शिक्षा नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? तुम लोगों ने सोचा कि धर्मशास्त्र का उपदेश तो, क्योंकि शिक्षा का कार्य, शिक्षा जो है स्कूल में मिलता है, तो अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ स्कूल में मिलता है। तो तुम्हारी भ्रांति क्या हो गई? धर्म का उपदेश भी स्कूल करेगा, स्कूल धर्म का उपदेश नहीं करता है। हाँ, स्कूल केवल शिक्षा का उपदेश करता है, संस्कार का उपदेश नहीं करता है। और तुम लोग समझते हो कि बच्चे को स्कूल में डाल दो तो सब कुछ, मेरा बच्चे को वह स्कूल कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट करेगा? स्कूल कभी जीवन के संपूर्ण शिक्षा का उपदेश दे ही नहीं सकता है। कल भी एक चर्चा हो रही थी, आज सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, समय सापेक्षित शिक्षा, उच्च शिक्षा अपने संतति को अवश्य देनी चाहिए। सभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बोलो? सभी लोग, सभी लोगों का यही लक्ष्य है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए। जैसा भी हो बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, तुम्हारा बच्चा मूर्ख न रहे। और हम सब क्या करते हैं? वही करते हैं। इसलिए हम स्कूल में जितना फीस देना पड़े भी देते हैं, बच्चों को स्कूल के जिम्मा लगा देते हैं और पैसा दे देते हैं, समझे नहीं? और स्कूल तुम्हारे बच्चों को भर्ती करता है और तुमसे पैसा लेता है, केवल शिक्षा का पैसा लेता है। किसका? एजुकेशन का। इसीलिए शिक्षा वो देता है, सभी स्कूल शिक्षा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना ज्यादा फीस लेंगे उतने अच्छा शिक्षा देंगे। आजकल यही प्रोफेशनल चल पड़ा है कि नहीं, बोलो? यही ना चल पड़ा है। लेकिन किसी स्कूल ने शिक्षा के अलावा संस्कार दिया हुआ कोई स्कूल आज मिलेगा नहीं? मिलेगा, क्योंकि हमने भी शिक्षित बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया है, संस्कारित बनाने के लिए भर्ती नहीं किया है। हमने मास्टर को, स्कूल को फीस शिक्षा का दिया है कि संस्कार का भी दिया है? बोलो, हाँ? हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का फीस दिया है, भरा है, कि संस्कारित बनाने का फीस भरा है? हाँ? मुझे तो नहीं लगता संस्कारी बनाने के लिए स्कूल में भर्ती किया हो तुम लोगों ने। संस्कार के लिए फीस दिया हो हमको तो नहीं लगता भाई। क्योंकि शिक्षा के लिए फीस दिया है, उन्होंने भी शिक्षा के लिए फीस लिया है, शिक्षा दिया है, लेकिन संस्कार नहीं देते। आज संस्कार देने के लिए स्कूल में कोई कुछ एक्शन करता है, मास्टर थोड़ा संस्कारी मास्टर होगा तो शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार की बात जब करेगा तो वो संस्कार के अनुशासन के क्रम में एक थप्पड़ मारेगा। बोलो क्या मारेगा? मारेगा कि नहीं? अनुशासित करना होगा, संस्कारी करना होगा तो थप्पड़ मारना पड़ेगा कि नहीं? थप्पड़ मारेगा तो बच्चा रोता हुआ घर में आएगा तो तुम लोग क्या कहते हो पता है? तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए पैसा नहीं दिया है, पढ़ाने के लिए पैसा दिया है। तुम लोग ये जवाब दोगे कि नहीं स्कूल को, टीचर को? हैं? बोलो ईमानदारी से बोलो। आज सब विश्व में सभी स्कूल वाले ने एक नियम बना दिया कि हमारा काम बच्चों को पीटना नहीं, पढ़ाना है। मतलब क्या हुआ? खाली पढ़ाओगे तो शिक्षित बनाओगे लेकिन संस्कारित नहीं होगा। संस्कार के लिए तो अनुशासन में लाना पड़ेगा, अनुशासन के लिए पीटना भी पड़ेगा, लेकिन पीटते ही कानून बना दिया मास्टर अब पीट नहीं पाएगा। हमारे जमाने में क्या था? हमारे गुरुकुल में क्या था? हमारे गुरुकुल में शिक्षा के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे? हमारा स्कूल, हमारे गुरुकुलम, हमारे प्राचीन भारतीय विद्या शिक्षा की परंपरा में क्या थी? विद्यार्थी को शिक्षित बनाने की अपेक्षा संस्कारी बनाना जरूरी है। पहले हम संस्कारी बनाते थे, फिर उसके बाद हम शिक्षित बनाते थे। और आज क्या होता है? बोलो आज क्या होता है? पहले शिक्षित बनाते हैं, संस्कारी बना दें, बाद में तो गनीमत थी, बाद में संस्कारी बनाने का काम उनका है ही नहीं, क्योंकि रोक लगा दिया, पीट नहीं पाओगे, डांट नहीं पाओगे। ले जी, हा एक स्कूल में किसी सनातनी का बच्चा घर में पूजा हुआ, उसने मां ने तिलक लगा दी भगवान के प्रसाद का, वो तिलक लगाए ही स्कूल चला गया तो टीचर ने पीटा मारा, कह दिया कि तिलक लगा के स्कूल में नहीं आ सकता है, कानून बना दिया हमारे स्कूल में ये तिलक टिक्का लगा के नहीं आ सकते हो। मतलब क्या हुआ? संस्कार का कोई जगह नहीं हमारे स्कूल में। ये संदेश दिया गया कि नहीं? बोलो तो इस नियम से तो आज कोई स्कूल संस्कार नहीं देता है। तो विडंबना क्या हुआ? ना घर में हम देते हैं, ना स्कूल में कोई देता है, परंतु क्या शिक्षित होकर पढ़े लिखे होकर आते हैं, है ना? अभिवादनशीलता है ना, विनम्रता है ना, अनुशासन है, है कुछ नहीं, उद्दंड होकर आते हैं, क्योंकि शिक्षित तो है, संस्कार है ही नहीं। तो धर्म चक्षु संस्कार से प्राप्त होता है। कौन से संस्कार से? धर्म शास्त्र के माध्यम से धर्म चक्षु की प्राप्ति होती है, यही कारण है। धर्म शास्त्र अलग अलग हैं, जिसने जिस धर्म शास्त्र के माध्यम से जो संस्कार दी वही उसका धर्म चक्षु बन गया। समझ गए कि नहीं? जैनियों ने जैन धर्म के शास्त्र के द्वारा अपने बच्चों को संस्कारित किया और क्या कहा? बटाटा नहीं खाना। तो यदि धर्म चक्षु, जैन धर्म का चक्षु उसके पास विकसित हुआ होगा तो वह बटाटा खाएगा? बोलो। और क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कह दिया कि दही नहीं खाना, और यदि उसका बेटे के पास जैन धर्म का दृष्टि, धर्म चक्षु यदि होगी तो दही खाएगा, क्योंकि उस धर्म के शास्त्र के आधार पर तुमने उसको संस्कारित दी की और उसको धर्म चक्षु दिया, तो वह सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना कहा तो क्या वो खाएगा? है ये देख लो। और एक मुसलमान क्या कहेगा? उसकी अपनी अलग दृष्टि है, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र अलग है, और उसी धर्मशास्त्र के अनुसार एक मुसलमान अपने बच्चों को संस्कार देंगे मुल्ला मौलवी आदि अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे तो उनकी धर्म चक्षु मुस्लिम धर्म चक्षु होने के कारण, क्योंकि वो चक्षु कुरान से आया है। और ये क्रिश्चियन अपने बच्चों को जो संस्कार देगा वो बाइबिल के आधार पर देगा, तो उनकी धर्म चक्षु उसी प्रकार के होगी। चर्म चक्षु प्राकृत होने के कारण सभी के समान हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो। चर्म चक्षु प्राकृत है, किसी धर्मशास्त्र से दिया नहीं, इसलिए सभी को लाल फूल लाल ही दिखेगा। समझे कि नहीं है? लाल फूल लाल ही दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे जो। चर्म चक्षु सबके समान है, लेकिन धर्म चक्षु में अंतर है। धर्म चक्षु में क्या है? अंतर है। क्योंकि अंतर होने में कारण क्या है? धर्म चक्षु को विकसित करने के धर्म शास्त्र अलग अलग हैं, और उन अलग अलग शास्त्रों से दिया गया होने के कारण धर्म चक्षु स्वतः अलग अलग हो गए हैं। हम तो मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहे हैं ना, हमारा शास्त्र तक कर रहा है कि नहीं? सनातन का शास्त्र मांस खाने के लिए भी निषेध कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बोलो? और मुसलमान तो मांस खाने के लिए निषेध नहीं करता, परिणाम क्या हुआ? उनका धर्म हिंसा पर आधारित हो गया। उनका धर्म बोलो हिंसा पर आधारित हुआ कि नहीं? भगवान को तो कुर्बानी दो, यहां से धर्म शुरू हो गया। बकरी ईद के दिन जितना बड़ा कुर्बानी दोगे उतना ही खुदा प्रसन्न होगा, होगा कि नहीं बोलो? हैं? होगा, उनका शास्त्र कह रहा है, इसलिए कुर्बानी दी जाती है। गाय का कुर्बानी दो, भैंस का कुर्बानी दो, ऊंट का कुर्बानी दो, बकरे का दो, काटो, भगवान के लिए कुर्बानी करो। नहीं तो बकरी ईद क्यों बनाया बोलो? उन्होंने, हमने बनाया, आप लोगों ने बनाया है? बनाया है? अब उन लोगों के देखो, रोजा का एक महीना होता है, दिन में नहीं खाना कहा धर्मशास्त्र ने तो दिन में नहीं खाते, दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, और सूर्य अस्त के बाद मांस भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, सर्वभक्षी है, क्योंकि कुरान ने निषेध नहीं किया है। कुरान ने दिन में पानी नहीं पीना कह दिया है, तो दिन में पानी नहीं पीना। हाँ, दिन में खाना नहीं खाना तो कह दिया दिन में खाना नहीं खाना। तो उनकी दृष्टि में दिन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, वही धर्म है, है? और रात में कुछ भी खा लो, मांस खाओ, मटन खाओ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, लेकिन दिन में नहीं खाना कुछ, वो धर्म है, उनको वही दिखता है। तो कितने हो गए दृष्टि? एक चर्म चक्षु, दूसरा धर्म चक्षु। मुसलमान को भी स्वर्ग नरक दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, लेकिन वो पुण्य पाप की परिभाषा उनके धर्म के आधार पर करते हैं। हमारे धर्म के आधार पर करते हैं क्या? है? क्यों अंतर हुआ धर्म चक्षु में? क्योंकि शास्त्र अलग अलग हो गए धर्म शास्त्र, इसीलिए दृष्टि में अंतर आ गया। ये देख लो, इसी प्रकार के क्रिश्चियन का तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। बदलता है कि नहीं बोलो? धर्मशास्त्र का भरोसा नहीं है, स्थायी नहीं है, बदल भी जाता है। पहले हिंदू के संस्कार से, शास्त्र से उसको धर्मशास्त्र दृष्टि दी गई थी, धर्म चक्षु था, पूरा धार्मिक था, वैदिक सनातन धर्म के आधार पर। अब वो किसी कारण से मुसलमान बन गया तो अब वो हिंदुओं का धर्म दृष्टि चक्षु चला गया। अब कौन सा चक्षु आ गया? मुस्लिम धर्म चक्षु आ गया। ये देख लो, कोई जैनी मान लो किसी कारण से मुसलमान बन गया, कोई सनातनी बन गया जैनी। हिंदू सनातनी जब तक जैन था तब तक तो बटाटा भी नहीं खाता था, अब बोलो वो जैन यदि मुसलमान बन गया तो गाय का मांस खाएगा कि नहीं, पाप मानेगा उसको, बदल गया कि नहीं, बोलो धर्म चक्षु बदल गया कि नहीं। इसलिए धर्म चक्षु का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए, चर्म चक्षु का भी भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए। इसके अलावा एक तीसरा नेत्र है, कौन सा था मालूम है? ज्ञान चक्षु। ये तीसरा चक्षु है ज्ञान चक्षु। हां, ज्ञान चक्षु न प्राकृत है न संस्कृत है। ज्ञान चक्षु प्राकृत भी नहीं, प्रकृति का दिया हुआ भी नहीं। ज्ञान चक्षु धर्मशास्त्र का दिया हुआ नहीं है, ध्यान देना। धर्मशास्त्र ज्ञान चक्षु नहीं देते। ज्ञान चक्षु देने वाला शास्त्र कौन है? वेदांत शास्त्र और गुरु। धर्म चक्षु देने वाला गुरु नहीं, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु, धर्म चक्षु देने वाला माता पिता और पुण्य पंडित पुरोहित, और धर्म चक्षु देने वाला प्रकृति, ज्ञान चक्षु देने वाला गुरु। ज्ञान चक्षु के बाद फिर और चक्षुओं की कोई उपयोगिता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार आ गया आपका, ठीक हो गया, खुल गया, हम ध्यान देना, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया आपका, फिर वह बदलता नहीं। ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया फिर वह बदलता भी नहीं, ज्ञान चक्षु एक बार खुल गया वह नष्ट भी नहीं होता, बदलता भी नहीं। यही तो आत्यंतिक दुख त्रय की निवृत्ति हो जाएगी। तत्त्वमसि, ये देख लो, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तीन नेत्र भगवान शिव के हैं। शिव के कौन कौन सी हैं? चर्म चक्षु भी ठीक काम कर रहा है पूरा का पूरा, और धर्म चक्षु भी पूरा काम करता है, और ज्ञान चक्षु भी शिव जी का तो पूरा काम कर रहा है, बिगड़ केवल जीव जी का बिगड़ रहा है। कौन सा चक्षु बिगड़ रहा है? जीव जी का। ज्ञान चक्षु खुला ही नहीं है। हमने देखा एक आश्रम में, हरिद्वार में बड़ा एक खेत था, फार्म था, तो वहां एक कुत्ता पाल रखा था, तो कुतिया भी थी, कुतिया ने बच्चा दिया, तीन चार बच्चे एक साथ हो गए, तो बड़े जोर जोर से रोने लग गए वो बच्चे कुतिया के। हमने जाके देखा तो अभी अभी पैदा हुए थे बेचारे, आंख तो बंद, हाँ अभी अभी पैदा हुए थे, आंख खुले ही नहीं थे बेचारे, आंख बंद का बंद, और देख ही नहीं रहे। तो दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुली, तब वो बच्चे लोग, वो कुतिया के बच्चे तब देखने लग गए, दो तीन दिन के बाद उनकी आंख खुले। इसी तरह हमारा कब खुलेगा पता नहीं। कौन सा? ज्ञान चक्षु। हमारे ज्ञान चक्षु बंद है, ज्ञान चक्षु तो है खुले नहीं है। और ये जो उपक्रम है क्या है? ज्ञान चक्षु खोलने का उपक्रम है, और ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, इन सब चार कृपाओं के माध्यम से ये ज्ञान चक्षु खुलता है। भगवान करे आपकी ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए। बोलो आप क्या चाहोगे? मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, आपके सामने एक विकल्प रखता हूं। चर्म चक्षु हमेशा ठीक रहे ये चाहते हो कि भले ही चर्म चक्षु बिगड़ता है बिगड़ जाए, ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाए ये चाहते हो? अच्छा, ज्ञान चक्षु खुल जावे तो फिर चर्म चक्षु की आवश्यकता रहेगी कि नहीं? यदि तुम कहते हो कि ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद चर्म चक्षु की तो आवश्यकता रहेगी महाराज, फिर कुलीन कोठारी के यहां तो जाने लगोगे तो ज्ञान चक्षु की कोई उपयोगिता नहीं है। वो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यही ज्ञान चक्षु खुलने की बात है। और ज्ञान चक्षु की बात गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है। कौन से अध्याय में है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। कोई तीसरा कहता है, कोई दूसरा कहता है। अब बोलो कितना कौन सा अध्याय? पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने न चर्म चक्षु की चर्चा की,